तो बनेगी मेरी।
अम्मा मोए नहीं मालूम, मुँह पे नहीं होता ऐसा काम अकेले।
ए बहू, जब तक जा घर की डोर मेरे हाथ में है मेरी चलेगी, तो रहने ओए रह, नहीं तो निकल जा घर से।
जे घर में वो भी है अम्मा, मैं कहूँ नहीं जा रही, मैं रहूँगी जाई घर में।
तो मैं वो बंद करके रह, अब सब मेरी चल रही है, मेरी सत्ता है जा घर में। बस
चला लो अम्मा, कहूँ तो मैं वो टाइम भी आएगो, डोर मेरे हाथ में भी तो आएगी, तब मैं देखूंगी।
नमस्कार, मैं रविश कुमार, आप देख रहे हैं सबका भारत या एक तरफा भारत पार्ट 4। सकल घरेलू संबंध की विकास दर में भारी गिरावट देखी जा रही है, लेकिन यह है क्या? लोग पारिवारिक कारणों से एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, वे लोग अब राजनीतिक कारणों से संबंध तोड़ रहे हैं। भारतीय समाज का सकल घरेलू संबंध विकास दर के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, यह इंडेक्स ही नहीं बना है, लेकिन सोशल मीडिया में उपलब्ध सामग्रियों और व्यक्त विचारों के आधार पर पता चलता है कि इस वक्त सबसे बड़ा झगड़ा केवल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, केवल मुसलमानों के प्रति नफरत का प्रसार नहीं हो रहा, बल्कि रिश्तों के आधार पर भी नफरत फैल रहा है। परिवारों में अनादिकाल से झगड़े चले आ रहे हैं, वहां भी मर्जी किसकी चलेगी इसकी लड़ाई चल रही है और बहसों का उत्पादन हो रहा है। इसी को हमने सकल घरेलू संबंध कहा है। फिलहाल के लिए आप सकल घरेलू उत्पाद को लेकर हो रहे झगड़े को छोड़ दीजिए। सच कहूं तो जीडीपी की ग्रोथ फोरकास्ट करने वाले बाबाओं से बहुत तंग आ गया हूं। अभी इसका सपना देखते हुए महीना भर भी नहीं बीतता है कि भारत की जीडीपी 8.5% रहेगी, कोई ना कोई आ जाता है और कांट छांट कर देता है कि 7% रहेगी और उससे भी कम रहेगी। कभी रिजर्व बैंक जीडीपी घटा देता है तो कभी विश्व बैंक। क्या आपको याद है कि किस साल किसी ने कहा था कि भारत की जीडीपी 8% रहेगी और उतनी ही रही या उससे ज्यादा हो गई? ये किस साल हुआ था और कितने साल पहले हुआ था? आप कितनी सूचनाओं का हिसाब रखेंगे? यह भी कहना सही नहीं होगा कि सूचनाओं का महत्व नहीं है, खबरें तो छपी रही हैं, लेकिन मैंने देखा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ही कम ऐसी सूचनाएं साझा होती हैं जिन्हें हम खबर समझते हैं, नागरिक चेतना के लिए जरूरी समझते हैं। मैं केवल गुड मॉर्निंग मैसेज की बात नहीं कर रहा और ना ही पत्नियों को लेकर बनाए जाने वाले लतीफों की। ऐसे सामाजिक परिवेश के बीच सूचनाओं के प्रति निष्ठा कभी कभी मेरी भी हिल जाती है, कभी कभी। जिस तादाद में आध्यात्मिकता के कारोबारी चारों तरफ नजर आ रहे हैं, मुझे लगा कि न्यूज में भी आध्यात्मिकता का स्कोप है। न्यूज आध्यात्मिकता वो आध्यात्मिकता है जिसके तहत जब तेल महंगा हो तो समाज में किसी वीर पुरुष की चर्चा की जाए, जब बेरोजगारी बढ़ जाए तो शहर में बने सुंदर पार्क का मनोहारी दृश्य दिखाया जाए, ताकि दिखे भी नहीं और दिखाने का काम भी जारी रहे। न्यूज आध्यात्मिकता क्या है, इसे आप आने वाले समय में विस्तार से समझते रहेंगे, लेकिन स्वामी सीरीज का लोगो लॉन्च कर रहा हूं, प्राइम टाइम के स्वामी सीरीज का लोगो, पहले वो दिखाना चाहता हूं। मैं एंकर हूं, अग्नि के हिसाब से भयंकर हूं, जल के हिसाब से प्रलयंकर हूं, मेरी वाणी से निकली खबरों की गंगा इंसानों के विवेक जगत में जलजला पैदा कर देती है, गोद में बैठे गोदी मीडिया के शाप से घास की दूब के नीचे दबे विवेक भी जलकर खाक हो जाते हैं। मेरे काम के रास्ते में ना तो गाली देने वाले वीडियो की कमी है और ना ही तलवार चमकाने वाले वीडियो की, फिर भी कभी कभी भाग्य की रेखाएं मुझे उलझा लेती है। नित्य ही प्रातःकाल मन में ख्याल आते रहते हैं कि हिंदी मीडियम के युवाओं को कैसे स्विस चॉकलेट की कथा सुनाऊं, तभी आकाशवाणी होने लगती है, वत्स तुम प्राइम टाइम में स्वामी सीरीज शुरू करो, स्विस चॉकलेट की चिंता छोड़ो, स्वामी बनकर तुम जो भी कहोगे लोग दास बनकर सब स्वीकार करेंगे, उसे ही स्विस चॉकलेट समझ लेंगे। जगत में झगड़ा केवल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सास बहू का भी है। इस झगड़े के कारण बहुत से मकान भीतर भीतर ढहे जा रहे हैं, किसी को माई का भागना पड़ रहा है, किसी को जमाई का भागना पड़ रहा है। धर्म के नाम पर हिंसा करने वाले युवाओं को तुम रास्ते पर लाने का प्रयास छोड़ दो, उन्हें सूचनाओं की जरूरत नहीं, तुम न्यूज आध्यात्मिकता की बातें करो। अपने दर्शकों को पाताल लोक में ले जाओ। वहां से एक गुप्त दरवाजा खुलेगा, बहुत गर्म हवा का झोंका आएगा, लेकिन घबराना मत, यह वही मार्ग है जिसे गर्त कहते हैं। गर्त की गति पर चलो, सदगति मिलेगी। स्वामी सीरीज शुरू करो, नौकरी सीरीज बंद करो। इस आकाशवाणी का जो भी तिरस्कार करेगा उसका टीवी म्यूट हो जाएगा। इसी आकाशवाणी को सुनते ही लगा कि प्राइम टाइम में स्वामी सीरीज शुरू कर देनी चाहिए। दर्शकों को सांसारिक दुखों से मुक्ति का मार्ग चाहिए। बहुत से दर्शक मुझे पानी बिजली की समस्याओं में उलझाकर खुद YouTube में क्या क्या देखते हैं अब पता चल रहा है। दर्शकों के कल्याण का एकमात्र उपाय है प्राइम टाइम का स्वामी सीरीज। यह व्यंग्य प्रधान कार्यक्रम तो है, मगर एक बार प्रधानी का चुनाव लड़कर देखिए, राजनीति की सारी समझदारी हवा हो जाएगी। न्यूज आध्यात्मिकता एक नया मार्केट है। स्वामी सीरीज एक किस्म का स्टार्टअप है, यूनिकॉर्न है। अगर कोई इसमें निवेश करना चाहता है तो स्वागत है। ऐसे सीरीज में निवेश करने से छापे भी नहीं पड़ेंगे। स्वामी सीरीज का मुख्य उद्देश्य किसी से टकराना नहीं है, बल्कि टरकाना है। तो आज का विषय है सास बहू का झगड़ा। जम्बू द्वीप में लाउडस्पीकर को लेकर झगड़े हो रहे हैं, पर ये क्यों हो रहे हैं? अलीगढ़ में एबीवीपी के युवाओं ने मांग की है कि शहर के चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाकर पाठ हो। यह कितनी सुंदर बात है, लेकिन यह सुंदरता केवल चौराहे से गुजरने वालों को ही क्यों नसीब हो? मुंबई में रोज ही दावेदारी हो रही है, यहाँ पाठ होगा वहाँ पाठ होगा। कमाल का आइडिया है, हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं? क्यों ना हर हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर लाउडस्पीकर लगा दें, कारों के ऊपर लाउडस्पीकर लगा दें, स्कूल के बाहर लाउडस्पीकर लगा दें, अस्पताल के बाहर लाउडस्पीकर लगा दें, ताकि कोई कहीं से भी गुजरे लाउडस्पीकर से आ रही आवाज को सुने बगैर गुजर ही ना सके। जब तक मस्जिदों से सारे लाउडस्पीकर नहीं उतर जाते, तब तक इसके नाम पर शहर के हर कोने में लाउडस्पीकर लगा देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस में लाउडस्पीकर का बहुत रोल है। 100 साल से इस पर बहस हो रही है। अब ऐसी हर जगह को अवैध घोषित कर दिया जाए जहां लाउडस्पीकर ना पाया जाए। शहर में हर पल पाठ होता रहे, ताकि किसी धर्म को इस बात की शिकायत ना रहे कि सामने वाले धार्मिक कार्य के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं। राज ठाकरे भी राज करें, उद्धव ठाकरे भी राज करें। प्राइम टाइम के स्वामी सीरीज का एक ही मकसद है, टकराव के दिनों में टरकाने की आध्यात्मिकता का प्रसार करना। हम विश्व गुरु बनने की राह पर हैं। जब दिखाने से नहीं दिख रहा है तो क्यों ना ऐसा दिखाया जाए जिसमें कुछ दिखे ही ना। उस असीम शक्ति की कृपा आप पर भी बरसे जिसने सड़कों पर भीड़ छोड़ रखी है, जिसके निर्देशों के पालन में भीड़ की शक्ति असीम हो गई है। हर दूसरा आदमी मुझे सलाह देता है कि न्यूज से दूर रहो, सरकार से सवाल पूछना बंद कर दो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, जो होना है होकर रहेगा। इस देश में हिंदू मुस्लिम का सिलेबस बंद नहीं होने वाला। यह सिलेबस मोहल्लों में हिंदी मीडियम लड़कों को टॉपर बना रहा है। ये एंकर, तुम समय नहीं हो, बल्कि तुम इस समय में असमय हो। अगर तुम्हारे शहर में समंदर का किनारा नहीं तो इस देश में समंदर के किनारों की कमी नहीं। वहां जाकर विश्राम करो, लाइफ का लुत्फ उठाओ, स्वामी बन जाओ। वैसे यह है तो व्यंग, मगर इसकी गंभीरता को समझने के लिए कुछ योग्यताओं का होना बहुत जरूरी है। इस कार्यक्रम को वही दर्शक समझ सकते हैं जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई के बाद, शादी के बाद कम से कम 20 साल से कोई किताब नहीं पढ़ी है, कई साल से कहानी की भी कोई किताब नहीं पढ़ी है, जिनके घर में हर चीज है लेकिन एक ढंग की किताब नहीं है। सिर्फ वही लोग इस व्यंग्य को समझ सकते हैं जो व्हाट्सएप में आए हर मीम से इतिहास सीख जाते हैं। तो सकल घरेलू संबंध के तहत हम पारिवारिक झगड़ों पर ध्यान देने जा रहे हैं। हमने देखना शुरू कर दिया कि अखबारों में रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या छप रहा है। क्या पता यही उपाय हिंदू मुस्लिम रिश्तों को बेहतर करने के काम आ जाए। जब ऐसी खबरों को पलट कर देखा तो लगा कि यहां तो घर घर में ही जुलूस निकल रहा है। सास को खुश करने के 5 आसान तरीके पर नजर पड़ी तो पता चला कि शादी के बाद लड़कियों को सबसे ज्यादा इसी बात की टेंशन है। हमें लगा कि लड़कियां व्हाट्सएप ग्रुप में धर्म विरोधी मीम खेलने में लगी होंगी, पर यहां तो उन पर सास को खुश करने का भी लोड है। नवभारत टाइम्स की इस खबर से समझने में मदद मिली कि सास को मनाने के लिए जरूरी है कि बहू सास के नेचर को समझे, नेचर को बदलने का प्रयास ना करे, बल्कि पता करे क्या पसंद है, पति को बीच में ना लाए और मां जैसा सम्मान देना ही होगा। इस तरह के झगड़ा सुधार लेखों में सास झगड़ालू है, चालाक है वगैरह वगैरह, लेकिन झगड़ा एक तरफा तो होता नहीं, इसलिए नवभारत टाइम्स ने सास के एंगल से भी खबर छाप दी। बहू को खुश करने के 5 आसान तरीके क्या हैं? क्या इन आसान तरीकों को अपनाकर हम भारत में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित कर सकते हैं? जैसे इसमें लिखा है कि नई बहू पर किसी तरह का दबाव ना डालें, सपोर्ट करें, बेटे के साथ समय बिताने दें, कोई काम नहीं आता है तो बहू को सिखाएं, साथ में समय भी बिताएं। टाइम्स ऑफ इंडिया में पिछले साल मई में छपा एक लेख मिल गया, टॉक्सिक इन लॉज यानी जहरीले सास ससुर से अपनी शादी को कैसे बचाएं, यानी अंग्रेजी बोलने वाले भाई लोग भी इस लफड़े में परेशान हैं। इसमें लिखा है कि पति और पत्नी को मिलकर सास ससुर का सामना करना ही है, एकजुटता बनाए रखनी है। पत्नी के बारे में माँ बाप की गॉसिप यानी चुगली ना सुने। ओ तो माँ बाप लोग ये भी काम कर रहे हैं, बहू के बारे में गॉसिप कर रहे हैं और भीतर भीतर व्हाट्सएप ग्रुप में धर्म विरोधी नफरती मीम भी खेले जा रहे हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? नाउ आई नो यू, नाउ आई सी यू, नाउ आई टेल यू, जहर केवल धर्म को लेकर नहीं है, बहू के प्रति भी है। माई डियर टॉक्सिक इन लॉज, शेम ऑन यू। बेटे बहू से निवेदन है कि टॉक्सिक इन लॉज का व्हाट्सएप ग्रुप चेक कीजिए, अगर वो नफरती मीम खेलने में लगे हैं तो मुमकिन है फैमिली में बहू के बारे में भी टॉक्सिक यानी जहर फैला रहे होंगे। हम सबको मिलकर वायु और ध्वनि प्रदूषण दोनों से लड़ना है। विश्व गुरु के आंगन में टॉक्सिक इन लॉज तो भयंकर मामला है। मेरा प्रश्न है कि क्या जब किसी धर्म विशेष से नफरत का टाइम आता है तब टॉक्सिक इन लॉज यानी जहरीले सास ससुर और बेटा बहू सब मिलकर एक हो जाते हैं? मतलब क्या एक समुदाय के प्रति जहर से परिवार के भीतर जो जहर फैला होता है वो कम हो जाता है? बहुएं बता सकती हैं। इन लेखों को बिल्कुल आप नारीवादी नजरिए से पढ़ सकते हैं। इन सब में कुल मिलाकर मर्द ही चैंपियन बनते हैं। जैसे हिंदू और मुस्लिम को भिड़ाकर उनका राज कायम हो जाता है। हम बस यही देखना चाहते थे कि क्या आपके घरों में सबका भारत है, सबको बराबर की हिस्सेदारी है, या यहां भी एक तरफा भारत है। चेष्टा सक्सेना मशहूर व्यंग्यकार हैं, यूट्यूबर हैं, पुष्पा जिज्जी के नाम से उनका शो आता है। आज हमने चेष्टा के शो का काफी सहारा लिया है। उन्होंने बुंदेलखंड की बोली को भी हिंदी की मुख्य धारा में बेहद खूबसूरती से स्थापित किया है। उनके इस व्यंग्य में दो बातें, एक तो बिग बॉस टाइप आकाशवाणी होती है जो सास की है, और फिर बहू की बुराई सुनकर परलोक से सास की जो आवाज आती है उसमें भी एक संदेश है उसके असर में, उनके लिए जो तलवार लेकर सड़कों में घूम रहे हैं।
अरे मैं तो ऐसे अच्छे स्वभाव की अती, पूरे गांव में हंसत खेलत फिरती, जे तुम्हारे दद्दा से ब्याह का हुआ कि सब जिंदगी में ही बर्बाद हो गई, जिन्हें में हसवो खेल वो पसंद नहीं आतो, इतेक दवाते के मैं का बताऊं, सो में हो गई भारी चिड़चिड़ी, और तुम और है तो अब आई, जब आई तो लो तक तो मैं ऐसी कटखनी हो गई, सो में लगन लगी तुम और अनखो बुराई।
हाँ हाँ सही 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 कह रही अम्मा, तुम सही कह रही। अम्मा तुमने कब कही नहीं पहले बता था थी तो हम तुम्हारा दुख समझते, तुम हमारा समझती,
तो अपन मिलजुल के रहती अम्मा, विकार लड़वी लड़वी में निकल गई।
और तन की जिंदगी में तो अम्मा जो आई है।
सही कह रही अम्मा, पद्मा सही कह रही
अम्मा, अब आ जाओ तुम, अपन मिलजुल के रहे हैं।
अब तो गए सो गए। नहीं अम्मा, मतलब कछु तुमसे हो गई कछु हमसे हो गई, मगर अब आ जाओ अम्मा,
माफ करियो अम्मा,
माफ कर दियो अम्मा, माफ कर
दियो। अब तुम तो जेल चली गई,
अब तुम ना लड़ियो,
अब हमारे मिलजुल के रहे
हैं, अब हमारी ना करियो बुराई।
घरों में सत्ता का संघर्ष रोज चलता है, अविश्वास की ऐसी ऐसी कहानियां और उनका दर्द लेकर लोग बैठे हैं कि उनके बीच हम हर रात उनकी कहानी लेकर जाते हैं, जिन्हें रोज धर्म के नाम पर गाली दी जाती है, अपमानित किया जाता है। तब उस समाज पर, उस परिवार पर कैसे असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसलिए लगा कि स्वामी सीरीज ही करें ताकि जनता को उसकी समस्याओं से मुक्ति दी जा सके। जब हमने अखबारों में रिसर्च करना शुरू किया तब हमारी धारणा टूटने लगी कि सबका भारत है। पता चल रहा है कि समाज में और परिवार में एक तरफा झगड़े चल रहे हैं। तभी मैं कहूं कि धर्म के आधार पर नफरत ना करने की मेरी सारी अपीलों का असर क्यों नहीं होता है? एक जवाब मिल गया, क्योंकि समाज तो 10 तरह के और झगड़ों की नेट प्रैक्टिस में लगा हुआ है। अक्टूबर 2021 में नवभारत टाइम्स ने बहुओं को हिदायत देते हुए छापा कि अगर आप सास के साथ बिगाड़ नहीं चाहती हैं तो उनसे ये चार बातें ना कहें। जैसे सास को ना कहें कि हमारी जिंदगी में दखल ना दें, ये तो बिल्कुल ना कहें कि मैं आपके बेटे को आपसे बेहतर जानती हूँ, वरना घर की रसोई के सारे बर्तन ड्राइंग रूम में आ जाएंगे। और हाँ, इस लेख के अनुसार सास को बिल्कुल ना कहें कि काश आपने अपने बेटे को कुछ सिखाया होता। मगर कोई बात नहीं बहुओं, उसी नवभारत टाइम्स में ये भी छपा है कि जब मिल जाए चालाक सास तो बहू ऐसे संभाले। तो घबराना नहीं है चालाक सास। इसमें लिखा है कि कई बार ऐसी सास मिल जाती है जो नेचर से चालाक हो और हर चीज में नकारात्मकता ही तलाशती है। बताइए, हमें लगा कि समाज केवल दूसरे धर्म से नफरत करने में व्यस्त है, यहाँ तो घर घर में आग लगी हुई है। घरों में चल रहे इस सत्ता संघर्ष को चेष्टा ने अपने वीडियो में क्या खूब उतारा है।
मैं नहीं जानती अम्मा, मैं अकेले अकेले करके तंग आ गई। वो पे ना अकेले काम नहीं हो, कोई सपोर्ट नहीं है जब घर में।
अरे मैंने भी ना अकेले 18-18 घंटा काम करो है, मुखो भी काऊ को सपोर्ट नहीं है। तो मैं खुद से आत्मनिर्भर आती
अम्मा, रहन तो दो, काय फेंक रही फालतू अकेले अकेले करो है। 18-18 घंटे काम दो ही जन तो कर रहे, बस एक तुम कर रही एक बे कर रहे।
तेना बहू हमेशा मेरे विपक्ष में बोली जो बस।
नहीं तो भक्त बन जाऊँ अम्मा तुम्हारी, झूठी झूठी तारीफें करत रहूँ मैं तुम्हारी।
अरे ते का बनेगी खाके भक्त, भक्त ऐसे होते का। मैं एक बात कहूँ ते 10 सवाल करन लगत है, भक्तन की जवान नहीं चलत कतरनी सी, ये भक्त बनेगी मेरी।
अम्मा मोए नहीं मालूम, मोह पे नहीं होता ऐसा काम अकेले।
बहू जब तक जा घर की डोर मेरे हाथ में है मेरी चलेगी, तो रहने ओए रह, नहीं तो निकल जा घर से।
जे घर में वो भी है अम्मा, मैं कहूँ नहीं जा रही, मैं रहूंगी जाई घर में।
तो मैं वो बंद करके रह, अबे सब मेरी चल रही है, मेरी सत्ता है जा घर में बस।
चला लो अम्मा, कवाऊँ तो मैं वो टाइम भी आएगो, डोर मेरे हाथ में भी तो आएगी, तब मैं देखूंगी।
अच्छा आओ चल जा, चाय बना ला मेरे लाने।
अम्मा कितनी बार चाय पी होगी, दिन भर चाय चाय चाय।
अरे तो एक काम मालूम, जे चाय ने मुहे बचा के रखो है, 6 साल से मैं चाय के बल पे चल रही हूँ, जा बना के ले आ।
इसलिए प्राइम टाइम का स्वामी सीरीज बहुत जरूरी है समझने के लिए कि जो समाज हर दिन घर में हिंसा को अलग अलग तरीके से बर्दाश्त कर रहा है, वो समाज क्यों बाहर हो रही हिंसा का विरोध करेगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक आंकड़ा है, ज्यादातर औरतों ने माना है कि पति की हिंसा जायज है, 30% से भी ज्यादा, कुछ राज्यों में 70% से भी ज्यादा। हिंसा के साथ उन्हें जीने की आदत हो गई है। अभी हमने सास वाला एंगल ही चुना है, लेकिन ऐसे बहुत से और मिलेंगे, बल्कि ज्यादा ही मिलेंगे, जिसमें बहू को भी विलेन बनाया जाता है।
दिवाली पे का बनवा रही बहू से मिठाई?
बहू से बेजानती कछु बनावो
है,
सब हमारी मूड पे है, करवो धरवो सब घर संभालवो।
भैया तुमने तो खूब संभाल,
तुम तो जानती हम कितने काम एकदम फुर्तीले, हम शुरू ऐसे लगे काम में, हमने कहूंगो नहीं करो आलस।
सही बात है, तुम्हारी जैसे संभाल को
नहीं बहू है हमारी। अब तुमको बताए हम कि पहली बेर जब ब्याह होके आओ दीवारी पड़ी, बहू से हमने कही कि बनाओ रसगुल्ला
है, दीवारी है और का दीवारी पे बनाते
मिठाई तो बनता ही है। हमने कही कि लियो बनाओ रसगुल्ला। अब तुमको का बताएं, सच्ची में
बनिए ऐसी रसगुल्ला बनाए पथरा से,
जो को कह रही
और जो मारो तो काऊ को मूड फूट जाए।
तो भाई बात है।
सही कह रहे, कसम से रामदाई झूठ ना बोल रहे, ऐसी बने रसगुल्ला बना के धर दे। हमने जो कर्म पीट ले कि जी आएंगे हम,
बताओ तुमने पूछी बताओ काम कर पाती कि नहीं कर पाती।
बातें तो भी सवरे बड़ी बड़ी दे देते हैं, जो करत है वो करत बिने नहीं आत कछुए पवार। वो सब सोचो कि सब कछु हम ही हम लगे करवी में
है। सही में बताओ तो।
नहीं हाँ। बिल्कुल ही नहीं कर वो जानती वे तो।
भाई साहब हमारी बहू ने पहली बेर गुलाब जामुन बनाए ऐसे पथरा से, अरे का बताए कछु नहीं जानती वे, कछु नहीं आतुने बिल्कुल।
परिवारों में बराबरी की जगह के लिए संघर्ष चल रहे हैं। जिन परिवारों में बराबरी आई है वहाँ शांति है, दोस्ती है और खुशी भी है, लेकिन जहाँ जहाँ कंट्रोल की राजनीति है उन्हीं घरों में सड़क पर कंट्रोल की राजनीति के समर्थक भी हैं। हो सकता है बराबरी वाले घरों में भी हों, लेकिन ज्यादातर गैर बराबरी वाले ही मिलेंगे। जिन परिवारों में शांति नहीं है क्या वहां धर्म के नाम पर हो रहे फसाद को देखकर शांति आ जाती होगी? और जिन परिवारों में शांति नहीं है वहां क्या अखबारों में बताए जाने वाले इन उपायों से शांति आ जाती है? नवभारत टाइम्स के इस लेख में लिखा है कि ये सच है कि चाहे सास जैसी भी हो लेकिन वो अपने बेटे के लिए एक केयरिंग माँ ही होती है। ऐसे में उन्हें जिंदगी में से बाहर नहीं किया जा सकता, तो फिर क्या करें जिससे आप उनसे जुड़ी स्थितियों को संभाल सके? चलिए जानते हैं। तो उपाय बताया जा रहा है, अलर्ट रहें। अब बताइए कैसे अलर्ट रहें? क्या सास के पीछे सीसीटीवी लगा दें, घंटी बांध दें? कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाने पर काम करें, यह दूसरा सुझाव। तीसरा सुझाव, असुरक्षा के भाव को दूर करने की कोशिश करें। चौथा सुझाव, पति और ससुर को बीच में ना लाएं। सास बहू के फसाद पर काफी रिसर्च है। एक दूसरे पर नियंत्रण करने और लगातार शक करते रहने के कारण परिवार भले ना टूटता हो मगर भीतर से टूटा टूटा रहता है। मार्टिन रेव, गीतांजलि गांगुली, आयशा के गिल का एक रिसर्च इंटरनेशनल विमेन स्टडीज में प्रकाशित है। इनके अनुसार भारतीय सास लगातार बहू के खिलाफ हिंसा करती रहती हैं, खासकर दहेज के मामले में। दोनों के बीच हिंसा और प्रताड़ना के संबंधों को गहराई से समझने की जरूरत है ताकि पता चले कि भारतीय मिडिल क्लास परिवारों में कंट्रोल और पावर की लड़ाई किस स्तर पर चल रही है। इस लड़ाई में होने वाली शारीरिक और मानसिक हिंसा से औरतों को बचाने की जरूरत है। एक तरफ हम देखते हैं कि समाज में लोग गर्व का टोकरा सर पर उठाए चले जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही छोटी सी खरोच लगती है टोकरे का मुटरा खुल जाता है, अनैतिकता और क्रूरता के असंख्य कंकड़ भरभराकर बाहर आ जाते हैं। आज की ही खबर है, लड़की उससे शादी करना चाहती थी जिससे वो प्यार करती थी, पिता और उसके भाई ने मिलकर लड़की की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पिता और पुत्र भागे नहीं बल्कि अपने घर आए, नहाया धोया और आराम से चाय पीने लगे। बगल में एक और खबर छपी है कि बदायूं से भागकर प्रेमी जोड़ा अहमदाबाद गया और वहां मंदिर में शादी कर ली। घर वाले नहीं माने, प्रेमी ने खुदकुशी कर ली और प्रेमिका ने भी प्रयास किया। अब इस खबर को आपको कैसे सुनाए? पड़ोसी का कुत्ता भौंकने लगा तो झगड़ा हो गया, फिर कुत्ते के स्वामी पिता पुत्र को गोली ही मार दी, इलाज चल रहा है। भारत की महिलाओं के जीवन की सच्चाई किसी दूसरे देश की महिलाओं के जैसी है या अलग है यह हमारा विषय नहीं है, लेकिन यहां आए दिन अदालत में इस बात को लेकर बहस होती रहती है कि उनके देह पर किसका कंट्रोल है। जिस तरह से शोभा यात्रा में निकले युवा गालियां देते हुए बता रहे हैं कि देश पर किसका कंट्रोल होगा, उसी तरह पत्नी भी देह पर अपना कंट्रोल पाने की लड़ाई लड़ रही है। यहीं पर देह में देश और देश में देह दिखने लगता है। नियंत्रण की यह लड़ाई भावनाओं को लेकर भी है। हमें सोशल मीडिया पर औरतों का एक ऐसा समूह मिला जिनकी पहचान उजागर नहीं करूंगा, लेकिन उनकी बातों के कुछ नमूने रखना चाहता हूं ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि घर घर में क्या हो रहा है। एक महिला ने अपने घर के बारे में लिखा है, जब मेरी माँ जिंदा थी तब यह मेरा घर था, मैं माँ और भाइयों के साथ रहती थी, लेकिन उनकी मौत के बाद संपत्ति का बंटवारा हो गया, छोटे भाई के हिस्से घर आया और अब मैं उस घर में मेहमान की तरह जाती हूँ। मैं वहां रुक सकती हूँ लेकिन, एक लेकिन तो लगा ही रहता है। न्यूयॉर्क से एक महिला लिखती है, आफ्टर द मैरिज आई फील आई हैव बिकम अ सेकेंडरी सिटीजन इन माई ओन होम वेयर आई ग्रू अप फॉर 25 years। मेरे माँ बाप के दोनों बेटों ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है, पिता के आईसीयू में भर्ती होने पर भी नहीं आए, मैं ही उनकी देखभाल करती हूँ, मगर आज भी मेरे माँ बाप को बेटों से ही प्यार है। मेरे की एक काम की कद्र नहीं, संपत्ति में अपनी दोनों बेटियों को 5 रुपया भी नहीं दिया, कहते हैं बेटों का ही हक है। अगर मैं और मेरी बहन अपने हक की बात करें तो कहती हैं बेटियां पराई हो जाने के बाद हक नहीं मांग सकती, मगर फिर भी मैं ही उनकी सेवा करती हूँ। कितना याद आता है मुझे मेरा वो घर जिसे कभी कितनी शिद्दत से सजाती थी, आज वहां का तिनका भी अपना महसूस नहीं होता। सोचा था माँ पापा के जाने के बाद हम सब भाई बहन मिलकर वहां जाया करेंगे, लेकिन कब सब कुछ एकदम कैसे बदल गया पता नहीं चला। भाई ही हर निर्णय लेने लगा, जबकि हम दोनों बहनें बड़ी हैं। हमने भी कुछ सलाह के तौर पर बोला तो ऐसा लगा जैसे एकदम गलत किया हो, जैसे कोई अलिखित कानून हो कि माँ पापा के बाद भाई ही निर्णय लेने का अधिकारी होता है। उसका ये व्यवहार हमारी संवेदनाओं तक को भी हिला गया, लगा जैसे वो जगह हमारी कभी थी ही नहीं। ऐसा नहीं है कि यह समाज केवल धर्म के आधार पर नफरत करने में लगा है, उसके पास नफरत करने के और भी आधार है। इन किस्सों से गुजरकर यही लगा कि समाज में कितना अविश्वास है। जब परिवार में ही विश्वास नहीं है तो दो धर्मों के बीच विश्वास कायम करना मुश्किल काम है। जैसे झगड़े और तनाव के बाद भी परिवार चलते रहते हैं, उसी तरह देश भी चलता रहेगा। जो जहां है वहीं हताशा में मन मारकर जी रहा होगा, जीवन को उल्लास की जगह बोझ बनाकर बैठा होगा। इस नजर से देखिए तो पता चलेगा कि इस जगत में खुश कौन है। जो गैरों पर हिंसा कर रहा है वही अपनों पर भी कर रहा है। सीतापुर में महिलाओं का सड़क पर उतरना आसान नहीं रहा होगा। बजरंग मुनि को गिरफ्तार किया है तो अब उनके समर्थकों के लिए भी सड़क पर उतरना जरूरी हो गया है। सीतापुर की औरतों की लड़ाई दोहरी हो गई है। घर की हिंसा के साथ साथ धर्म के नाम पर हिंसा का भी विरोध करना पड़ता ही होगा।
ये मुस्लिम महिलाओं को सरेआम रेप करने की धमकी देने वाला बजरंग मुनि है, जिसे बुधवार रात यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। माहौल बिगाड़ने के अंदेशे से रात को ही बजरंग मुनि को जज के सामने पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बजरंग मुनि ने यह नफरती भाषण 2 अप्रैल को दिया था और गिरफ्तारी 12 दिन बाद हुई। पुलिस को लगभग 10 दिन तक सारे सबूत होने के बाद भी शांत बैठा देख महिलाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सब महिलाएं किसी संगठन से नहीं जुड़ी हैं, ये सब आम गृहिणियां हैं जो अपने हक की आवाज उठाने के लिए, इंसाफ की आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरी हैं।
औरतों को एक तरह से गाली दी गई है, गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, और इसीलिए हमने यहाँ विज्ञापन दिया है कि जो है हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए।
चाहते हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमको ये उनकी तरफ से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए।
पुलिस ने पहले तो बहुत हल्की धारा 298 के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसमें सिर्फ 1 साल की सजा है, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो पुलिस ने धाराएं भी बढ़ाई। पुलिस ने बजरंग की गिरफ्तारी के बाद प्रेस नोट जारी किया, जिसके मुताबिक बजरंग को माहौल खराब करने के लिए भड़काऊ भाषण देने, लोक शांति भंग करने, लोगों को हिंसा के लिए भड़काने जैसी गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद बड़ी संख्या में बजरंग के समर्थक इकट्ठा हो गए। पुलिस ने बल प्रयोग कर लाठीचार्ज की और भीड़ को तितर बितर कर दिया। बजरंग मुनि की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोश कस्बे में फैला हुआ है, कई जगह तो पीएसी भी तैनात करनी पड़ी है। बजरंग मुनि ने 2 अप्रैल को एक जुलूस में कस्बे की शीशे वाली मस्जिद के सामने महिलाओं के खिलाफ एक अमर्यादित टिप्पणी की थी। उन्होंने महिलाओं को रेप करने की धमकी दी थी। इस मामले का संज्ञान महिला आयोग ने भी लिया था। इस वीडियो में हेकड़ी दिखा रहे बजरंग मुनि ने अपने बयान पर माफी भी मांगी थी।
सभी माताओं बहनों से मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है, अगर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें।
पहले भी बजरंग मुनि ऐसे कई भड़काऊ भाषण देता रहा है, जिन पर पहले से मुकदमे भी दर्ज हैं। सत्तारूढ़ दल के कई नेताओं के साथ बजरंग मुनि की तस्वीरें वायरल हैं। जैसे इस तस्वीर में योगी सरकार में मंत्री राजेश राठौड़ बजरंग को कंधा देते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अलीगढ़ की हैं, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ता अलीगढ़ के 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। इनकी मांग है कि अलीगढ़ प्रशासन लाउडस्पीकर पर हो रही अजान पर रोक लगाए। माहौल खराब होता देख प्रशासन ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की इस मुहिम पर रोक लगा दी है।
नफरती भाषण 2 अप्रैल को दिया था और गिरफ्तारी 14 अप्रैल को, यानी लगभग 12 दिन बाद हुई है। देर आए दुरुस्त आए। लोग ये भी मांग करें, जिस तरीके से यूपी में अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वैसे ही बजरंग मुनि की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाया जाए, ताकि दूसरे जो ऐसे नफरती भाषण दे रहे हैं या ऐसी इच्छा मंशा रखते हैं वो भी सबक लें कि दोबारा ऐसा नफरती भाषण समाज में सामाजिक माहौल खराब करने के लिए कोई ना दे। सीतापुर में सहयोगी समीर और दिल्ली में सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
कोशिश तो यही थी कि चराचर जगत की दैनिक समस्याओं से दूर रहकर स्वामी सीरीज में न्यूज आध्यात्मिकता की बात करूं, लेकिन सन्यासी का टकराव संसार से हो ही जाता है। अब अमेरिका को कहने की क्या जरूरत थी कि भारत में मानवाधिकार के जो उल्लंघन हो रहे हैं उस पर नजर रख रहे हैं। भारत ने भी कह दिया अमेरिका में जो उल्लंघन हो रहे हैं उस पर भारत भी नजर रख रहा है। क्या इसके बाद अमेरिका में हो रहे उल्लंघनों को छोड़कर एनआरआई अंकिल इंडिया आ जाएंगे? आ सकते हैं। स्वामी सीरीज में न्यूज आध्यात्मिकता के प्रसार के लिए कई लोगों की मदद चाहिए। युवाओं को भी समझना होगा कि जब तक वे किसी शोभा यात्रा में तलवार लेकर नहीं नाचेंगे, गालियां नहीं देंगे, उनका कवरेज नहीं होगा। बेरोजगारी मन का भ्रम है। अगर समय पर परीक्षा नहीं होती है तो यह उत्सव की बात है। पिछले साल दिल्ली में नफरती भाषण दिए गए, कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जांच बंद कर दी गई है क्योंकि उन बातों में हेट स्पीच नजर नहीं आई।
पिछले साल दिल्ली में हुई धर्म संसद को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन अब दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस दौरान हेट स्पीच नहीं दी गई, इसलिए केस बंद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में पुलिस ने कहा है कि धर्म संसद में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई नफरती भाषणबाजी नहीं हुई। धर्म संसद के वीडियो व अन्य सामग्री की गहन जांच में पाया गया कि किसी समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच नहीं दी गई। दिल्ली की घटना में वीडियो क्लिप में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कोई बयान नहीं है, इसलिए सभी शिकायतों को बंद कर दिया गया है। भाषणों को पूरे मुस्लिम समुदाय के नरसंहार के लिए खुला आह्वान नहीं कहा जा सकता है।
इधर हरिद्वार धर्म संसद के मामले में उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इस मामले में 4 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें से 3 चार्जशीट दाखिल कर दी गई हैं। हम मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे, लेकिन इसके उलट दिल्ली पुलिस याचिकाकर्ताओं पर ही सवाल उठा रही है। पुलिस के मुताबिक वो साफ हाथों से नहीं आए हैं। हैरानी की बात है कि याचिकाकर्ताओं ने पुलिस में शिकायत नहीं दी, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जो पहले ही केसों के बोझ में है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार से भी इस मामले में जवाब तलब किया है। इस मामले में 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है। वहीं याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि दिल्ली पुलिस के इन दावों का जवाब अदालत में दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की असली परीक्षा अब अदालत में होगी, जब उसे सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करना होगा, साथ ही साथ ठोस दलीलें भी रखनी होंगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।
जब दर्शकों के समाज को अपने ही हालात से मतलब ना हो, तब क्या किया जाए? प्राइम टाइम के स्वामी सीरीज को कैसे आगे बढ़ाया जाए? आप बताइए, आपके अपने घरों में किस किस तरह से एक तरफा भारत नजर आता है? ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद यूक्रेन से उमा शंकर सिंह की रिपोर्ट देखिए।
नमस्कार, प्राइम टाइम के इस हिस्से में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि बोरोदरेंका शहर में किस तरह से तबाही का मंजर है। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच की लड़ाई में वहां शहर किस तरह से तबाह हुआ है। हम आपको दिखाते हैं कैमरे की नजर से इस शहर का हाल।
जिधर भी देखिए तबाही का मंजर है। ये यूक्रेन का बोरोदरेंका शहर है, जहां रूसी सैनिकों ने इस तरह की तबाही मचाई है। यूक्रेन की सेना के साथ जंग का ये एक मैदान रहा और यहां से इस इलाके से रूसी सैनिक जो हैं वो कीव में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये इलाका कीव से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है और यहाँ रूसी सैनिकों का भारी जमावड़ा था, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की सेना ने उनको जबरदस्त टक्कर दी, इस इलाके से वो आगे नहीं बढ़ पाए। क्यू के पास तक तो वो पहुंचे लेकिन क्यू में नहीं घुस पाए, लिहाजा जहां तक वो पहुंचे वहां इस तरह उन्होंने तबाही का मंजर जो है वो बिछाया। देखिए कोई भी यहां बिल्डिंग नजर नहीं आती जिसपे गोलियों के निशान न हो, जिसपे शेलिंग के निशान न हो, जो जली न हो और जो टूटी न हो। और इस मलबे के ढेर के बीच अब जो है यहाँ जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, जो सरकारी अमला है, वो मलबों को समेटने का काम कर रहा है क्रेन से। और जिस तरह से ये शहर तबाह हुआ है, ऐसे में एक दो दस या बीस दिन की बात नहीं है, महीनों लग जाएंगे और इस शहर को पटरी पर लौटने में सालों लग जाएंगे। यहाँ इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं जो यहाँ की जिंदगी की जिंदगी का सबूत पेश कर रही हैं। अब जैसे देखिए कि ये बच्चे का खिलौना, एक छोटा सा खिलौना जो मलबों के बीच है, जाहिर सी बात है कि इस घर में बच्चे भी रहते थे बड़ों के साथ, लेकिन जिस तरह से ये टूटा है हमें नहीं पता कि ये बच्चे कहाँ गए, उनके परिजन कहाँ गए, उनके माता पिता कहाँ गए। लेकिन अब यहाँ जो नजर आता है वो बस तबाही का आलम नजर आता है। बोरोदोयेंका शहर की बर्बादी के बीच ज्यादातर यहाँ के निवासी शहर छोड़ चुके हैं, दूसरे शहरों में जा चुके हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो अभी भी यहाँ बचे हुए हैं। और जो बचे हुए हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती रोज का जो जीवन है उसको जीने की, रोजी रोटी की और खाने पीने की। और इसलिए यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है जहाँ पे जो निवासी यहाँ पे बचे रह गए हैं, ठहरे रह गए हैं किन्हीं वजहों से, जो अपना घर छोड़कर, चाहे बेशक उनका घर टूट गया हो लेकिन अपना शहर छोड़कर नहीं जाना चाहते, उनके लिए यहाँ पे जो जरूरत की चीजें हैं उसको बांटने का काम चल रहा है। और ये देखिए किस तरह से जो सरसों का तेल है से लेकर और नैपकिन तक और फल से लेकर जो दवा की कुछ ज़रूरतें हैं वो भी यहाँ पर पूरी की जा रही है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, साबुन से लेकर तेल तक सब कुछ यहाँ से वो लेकर जा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल है इनके लिए इस वक्त जीवन, जिस तरह से बर्बादी यहाँ पर हुई है। बोरोदोयेंका से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।
आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।